वे ऊतक जो संरचनात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो संबंधित कार्यों में सम्मिलित होते हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। जाइलम वाहिकाओं, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। जटिल स्थायी ऊतक वे स्थायी ऊतक जिनकी कोशिकाएं विषमांगी होती हैं, अर्थात वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और संरचना असमान होती है लेकिन वे सामान्य कार्य करती हैं, जटिल ऊतक कहलाती हैं। जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का एक संग्रह है जो एक संरचनात्मक इकाई बनाता है और एक विशिष्ट कार्य करता है। सभी संवहनी पौधों में उपस्थित जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार। एक, जाइलम। जाइलम एक जटिल ऊतक है जो कई प्रकार की जीवित और मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह मुख्य रूप से पानी और खनिजों के संचालन से संबंधित है और पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। एक संवाहक तंतु के रूप में जाइलम जड़ों, तनों, पत्तियों, फूलों और फलों के माध्यम से एक सतत चैनल बनाता है। जाइलम के तीन मुख्य घटक हैं, ट्रैकरी तत्व, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। एक, ट्रैचरी तत्व। ट्रैकरी तत्व अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से पानी के संचालन से संबंधित हैं। जाइलम में पाए जाने वाले दो प्रकार के श्वसनीय तत्व ट्रैकिड और वाहिकाएं हैं। दोनों मृत कोशिकाएं हैं और परिपक्वता के समय जीवित प्रोटोप्लास्ट से रहित हैं। वे कमोबेश लिग्निफाइड द्वितीयक दीवारों वाली लंबी कोशिकाएं हैं। ट्रैकिड सभी संवहनी पौधों में उपस्थित होते हैं जबकि वाहिकाएं एंजियोस्पर्म तक सीमित होती हैं। हालांकि कुछ आदिम एंजियोस्पर्म ऐसे भी हैं जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित हैं। ऐसे वाहिका रहित एंजियोस्पर्म परिवारों से संबंधित हैं। आई विंटाइसी जैसे विंटर, ई टेट्रासेंट्रेसी जैसे टेट्रासेंट्रोन, ई ट्रोकोडेंड्रेसी जैसे ट्रोकोडेंड्रोन, जबकि कुछ उन्नत जिम्नोस्पर्म जैसे गनेटम, एफिड्रा, वेल्विचिया वाहिकाओं की घटना को दर्शाते हैं। इसके अलावा यूका और ड्रेकेना के तने और पत्तियों में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ट्रैकिड्स एकल कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं और उनकी सामान्य दीवारों पर गद्दे जोड़े के साथ छिद्रित कोशिकाएं होती हैं। दूसरी ओर वाहिका के सदस्य जो अलग अलग लंबाई की लंबी निरंतर नलियों में जुड़े होते हैं कोशिकाओं की अनुदैर्ध्य फाइलों से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने अनुप्रस्थ दीवारों को विघटित कर दिया है और इन दीवारों के माध्यम से रस एक बर्तन के सदस्य से दूसरे तक चला जाता है। श्वसनीय तत्वों की द्वितीयक दीवारों में मोटे होने के पैटर्न की एक विस्तृत विविधता होती है। पहले गठित जाइलम प्रोटोक्साइलम के श्वसनीय तत्वों में छल्ले, कुंडलाकार या हेलीकॉप्टर सर्पिल के रूप में द्वितीयक दीवार की मोटाई होती है। बाद में बने मेटाजाइलम और द्वितीयक जाइलम में द्वितीयक दीवारें आमतौर पर स्केलेरिफॉर्म या जालीदार मोटाई दिखाती हैं। दो, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम से जुड़ी पैरेन्काइमेट्स कोशिकाओं को जाइलम पैरेन्काइमा कहा जाता है। ये प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में उपस्थित होते हैं। प्राथमिक जाइलम में पैरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और सेलुलोज से बनी होती है, जबकि द्वितीयक जाइलम में दीवारें अक्सर मोटी होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का भंडारण करना है। ये पानी और खनिजों के पार्श्व संचालन में भी मदद करता है। तीन, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर्स क्लेरेन्काइमेट्स कोशिकाओं का समर्थन करते हैं और पौधे के शरीर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इनमें अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारें और संकीर्ण लुमेन होती हैं। स्थानांतरण कक्ष। उपर्युक्त कोशिका प्रकारों के अलावा एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं जाइलम से जुड़ी होती हैं जिन्हें स्थानांतरण कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं में सघन साइटोप्लाज्मिक सामग्री, बड़े नाभिक, असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इन्हें गैर लिग्निफाइड द्वितीयक दीवार की दीवार में वृद्धि की विशेषता है। प्लाज्मोडेस्माटा दो आसन स्थानांतरण कोशिकाओं की दीवारों पर भी उपस्थित हैं। स्थानांतरण कोशिकाएं विलेय के आंतरिक स्थानांतरण से जुड़ी होती हैं। दो, फ्लोएम। जाइलम की तरह फ्लोएम भी एक विशेष जटिल ऊतक है जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम के मूल घटक हैं। एक, छलनी तत्व। फ्लोएम के स्थानांतरित तत्वों को सामूहिक रूप से छलनी तत्व के रूप में जाना जाता है। छलनी तत्व दो प्रकार के होते हैं, आई छलनी कोशिकाएं और ई छलनी ट्यूब तत्व या छलनी ट्यूब। छलनी कोशिकाएं जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में होती हैं, एकल कोशिकाएं होती हैं जिनकी पार्श्व दीवारों में आमतौर पर विशेष छलनी क्षेत्र होते हैं। छलनी नलिकाएं जो आवृत बीजी पौधों में पाई जाती हैं, कोशिकाओं छलनी ट्यूब घट को की अनुदैर्ध्य फाइल होती है जिनमें अधिक विशिष्ट छलनी क्षेत्र छलनी प्लेट आमतौर पर अंत की दीवार में या उसके पास होती है। छलनी ट्यूबों की सबसे विशिष्ट विशेषता दो आसन छलनी ट्यूब सदस्यों के बीच मोटी क्रॉस दीवारों की उपस्थिति है, जिन्हें छलनी प्लेटों के रूप में जाना जाता है। एक छलनी प्लेट में बड़ी संख्या में छिद्र होते हैं। छलनी प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, सरल और मिश्रित। सरल छलनी प्लेटें अनुप्रस्थ रूप से रखी जाती हैं और उनमें छलनी क्षेत्र होता है, जबकि मिश्रित छलनी प्लेटें कई छलनी क्षेत्रों के साथ कुछ हद तक तिरछी झुकी होती हैं। लंबी छलनी ट्यूब तत्वों में आमतौर पर एक मिश्रित छलनी प्लेट होती है, जबकि छोटे तत्वों में सरल छलनी प्लेटें होती हैं। छलनी तत्वों के विभेदन के दौरान केंद्रक का अध: पतन प्रारंभ हो जाता है। परिपक्व छलनी तत्वों में पार्श्विका साइटोप्लाज्म की एक पतली परत और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसमें प्रोटीन युक्त प्रकृति का एक चिपचिपा पदार्थ भी उपस्थित होता है। कीचड़ साइटोप्लाज्म में अलग अलग निकायों के रूप में उत्पन्न होता है, जिन्हें कीचड़ निकायों के रूप में जाना जाता है, जो अकेले या एकाधिक में होते हैं और विभिन्न आकार के होते हैं। युवा छलनी तत्वों में इन निकायों में नलिकाओं के समुच्चय होते हैं, जिन्हें पी प्रोटीन के रूप में नामित किया जाता है। छलनी तत्वों की परिपक्वता के दौरान ये नलिकाएं साइटोप्लाज्म में फैलकर धारीदार तंतुओं के समूह बनाती हैं, जिन्हें P2 प्रोटीन के रूप में नामित किया जाता है। छलनी तत्वों की दीवारें मोटाई में भिन्न होती हैं, लेकिन वे आम तौर पर पड़ोसी पैरेन्काइमा कोशिकाओं की तुलना में अधिक मोटी होती हैं। छलनी तत्वों में आमतौर पर प्राथमिक दीवारें होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। हालांकि कभी कभी विशेष गाढ़ापन भी विकसित होता है, जिसे नेक्रियस गाढ़ापन भी कहा जाता है। इन गाढ़ेपन में चमकदार गुण होते हैं और कभी कभी ये कोशिका के लुमेन को लगभग अवरुद्ध कर देते हैं। कुछ पौधों में गैर कार्यात्मक छलनी नलिकाएं टाइलोसिड्स सन्निहित पैरेन्काइमा कोशिकाओं से प्रसार से भर सकती हैं। दो सहयोगी कोशिकाएं आवृत बीजी पौधों के छलनी नलिका तत्वों के साथ अत्यधिक विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, जिन्हें सहचर कोशिकाएं कहा जाता है। सामान्यतः शाकाहारी पौधों के प्राथमिक फ्लोएम में प्रत्येक छलनी ट्यूब कोशिका के साथ केवल एक साथी कोशिका जुड़ी होती है, लेकिन लकड़ी के पौधों के द्वितीयक फ्लोएम में प्रत्येक छलनी ट्यूब सदस्य के साथ कई छोटी साथी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। वे जीवित कोशिकाएं हैं, जिनमें घने दानेदार साइटोप्लाज्म, एक प्रमुख लंबा केंद्रक और कई छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ सहयोगी कोशिकाएं छलनी ट्यूब में दबाव प्रवणता के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे छलनी ट्यूब के सदस्यों और अन्य कोशिकाओं के बीच एक कड़ी बनाते हैं और सामग्रियों के पारित होने को नियंत्रित करते हैं। तीन फ्लोएम पैरेन्काइमा वे विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, जो छलनी ट्यूब कोशिकाओं से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। प्राथमिक फ्लोएम की पैरेन्काइमा कोशिकाएं संवहनी ऊतक में छलनी तत्वों की तरह अनुदैर्ध्य रूप से उन्मुख होती हैं। द्वित यक फ्लोएम में वे दो प्रणालियों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रणालियों के रूप में पाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर प्रणाली छलनी तत्वों के साथ अनुदैर्ध्य रूप से चलती है और क्षैतिज प्रणाली फ्लोएम किरणें बनाती है, जो पूरे अंग में क्षैतिज रूप से चलती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं मुख्य रूप से स्टार्च वसा और अन्य कार्बनिक खाद्य पदार्थों के भंडारण टैनिन रेजिन क्रिस्टल म्यूसिलेज आदि के संचय और घुलनशील खाद्य पदार्थों और पानी के पार्श्व परिवहन से संबंधित हैं। मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है। चार फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर वे सामान्यतः लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिनके सिरे आपस में जुड़े होते हैं और लिग्निफाइड दीवारें होती हैं, जिनमें साधारण गद्दे होते हैं। वे छोटे सरल गद्दों में जाइलम तंतुओं से भिन्न होते हैं। सहायता प्रदान करने के अलावा फ्लोएम फाइबर खाद्य सामग्री के परिवहन में भी भूमिका निभाते हैं। जूट सन और भांग जैसे पौधों के फ्लोएम रेशों को पानी में भिगोया जाता है और रस्सियां और मोटे कपड़े बनाने के लिए निकाला जाता है। फ्लोएम स्थानांतरण कोशिकाएं फ्लोएम कोशिकाएं जो चयापचयों के कम दूरी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं, फ्लोएम स्थानांतरण कोशिकाएं कहलाती हैं। इन कोशिकाओं की विशेषता दीवार के अंदर की वृद्धि और ऑर्गेनेल से भरपूर साइटोप्लाज्म है। इनमें एक विशेष प्रकार की गैर लिग्निफाइड द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, जो प्राथमिक दीवार के भीतरी भाग पर जमा होती है। प्लाज्मोडेस्माटा आमतौर पर दो आसन स्थानांतरण कोशिकाओं के बीच होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर। जाइलम में ट्रैकिड्स वाहिकाएं पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। जाइलम में दो प्रकार के संवाहक तत्व होते हैं, ट्रैकिड और वाहिकाएं। चार प्रकार के जाइलम तत्वों में से तीन मृत हैं। वे ट्रैकिड्स वाहिकाएं और तंतु हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित तत्व हैं। जाइलम रस के संचालन में भाग लेता है। प्रवाहकीय तत्वों में लिग्निफाइड गाढ़ापन होता है। चालन के अलावा जाइलम यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। द्वितीयक वृद्धि के साथ जाइलम की मात्रा में वृद्धि जारी रहती है। फ्लोएम इसमें छलनी नलिकाएं, साथ ही या एल्बुमिनस कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होते हैं। इसमें केवल एक प्रकार का ट्रांसलोकेटिंग तत्व होता है जिसे छलनी तत्व कहा जाता है। केवल फ्लोएम तंतु मृत होते हैं। फ्लोएम में तीन प्रकार के जीवित तत्व होते हैं, छलनी नलिकाएं, साथ ही कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम कार्बनिक विलेय के स्थानांतरण में भाग लेता है। ट्रांसलोकेटिंग तत्व बिना लिग्निफाइड और बिना किसी गाढ़ेपन के होते हैं। फ्लोएम में बहुत कम यांत्रिक शक्ति होती है। फ्लोएम की मात्रा में वृद्धि नहीं होती क्योंकि जैसे ही नया फ्लोएम क्रियाशील होता है, पुराना फ्लोएम कुचल जाता है। अभ्यास प्रश्न, जटिल ऊतक क्या है? जटिल ऊतक के प्रकार लिखें। जाइलम के घटक क्या हैं? फ्लोएम के घटक क्या हैं? जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर लिखिए।